राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा
जनवल्लभ गिरिवर धारी। नटवर ना
सागर नंदा भजुर मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है
सखियन में राधा जी बड़ी है
सब सखियन में राधा जी बड़ी है
सखियन में राधा जी बड़ी है
राधा जी बड़ी है 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 राधा जी बड़ी
जैसे नदियों में गंगा भजुर मन गोविंदा
नदियों में गंगा भजुर मन गोविंदा
नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा
नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा
श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा पर धर्य अमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे अरे हर सूर्य वर्य पर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने हर मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर्ण में कण रण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदिर श्याम मेरे जीजे रंग भर सुंदिर श्याम मेरे जीजे रंग भर सुंदिर
श्याम
हे तब डमक दमक दादुर तब डमकत बहकत मोर मलाल गिरा तब पियु पियु शब्द पुकारत जातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा तब गड़ गड़ नभ हो कड़ा कान गणन गिरिवर शिखर बजे गणन पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदिर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदिर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदिर की सब बाला रूप रसाला ब्रज की सब बाला रूप रसाला करीबे हला नंद लाला लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसीवाला बनवारी नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी गिरधारी रे जीजी गए विसारी गिरधारी रे जीजी गए विसारी जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय
राधा
जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
जगन्नाथ जगन्नाथ
जय गौर निताय जय गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 11। यम पश्यति न पश्यन्तम् चक्षुर्यस्य नरिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत। न यस्याद्यन्तो मध्यं च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्यामूर्ति यस्यस्मात् विश्वं च तद्रुतं महत्। ॐ अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिताश्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्ययेवश्च पतितानां पावनेभ्यो भ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धर
भरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती विदन्वता च सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भुरतेर्महतभी यैमा पुरो निर्मायशेते यदमूष्य पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो दशषोडशात्मक सुलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है प्रति बुधवार को यहाँ पर संत समागम, भक्तों का दर्शन और भक्तों का सामीप्य प्राप्त होता है। वास्तव में साधु संग करना, भक्तों का संग करना, यही जीवन का सर्वोच्च कार्य है, यही जीवन का सर्वोच्च काम है। इसलिए केवल भागवत ही नहीं, भागवत गीता वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ये समस्त शास्त्र एक साथ एक स्वर में कहते हैं साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे। साधु का संग भक्तों का संग करना ये समस्त शास्त्र कहते हैं और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा भी यदि साधु का संग किया जाए तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्तों के संग में बहुत बल होता है। वेदों में एक कथा आती है, एक बार महर्षि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर पर गए। लेकिन विश्वामित्र जी तो वशिष्ठ जी के घर पर गए, परंतु वशिष्ठ जी विश्वामित्र के घर पहले गए थे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के घर पर गए और विश्वामित्र जी ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद भोजन इत्यादि करने के बाद वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया। विश्वामित्र को प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को अपने जीवन की आधी तपस्या दान में दे दी। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में जो तपस्या की है इस तपस्या का आधा फल, आधी तपस्या का फल मैं तुम्हें दान में देता हूं क्योंकि आप मेरे घर पर आए हो। और ये फल लेकर अपने घर पर चले गए। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर पर गए। अब भक्तों में यह होता है, रूप गोस्वामी भक्ति सामर सिंह उपदेशामृत में कहते हैं ददाति प्रति ग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट विधम प्रीति लक्षणम। ये भक्तों का स्वभाव होता है कि एक दूसरे के घर पर जाते हैं टीवी देखने के लिए नहीं, भक्तों का स्वभाव होता है भजन करना, कथा सुनना। भक्तों का स्वभाव टीवी देखना नहीं होता है। हमारे चाचा बहुत सुंदर कहते हैं गुजराती में, आज ना छोकरा बहुत बगड़ी गया, एटला बगड़ा કે ફિલ્મ જોવા જાય, ત્રણ ત્રણ કલાક સુધી ફિલ્મ જોવા થિયેટરમાં બેઠા રે અને ફિલ્મ જોઈને બહાર આવીને હું કે નરેશ કનુડિયાએ જમાવ્યું નહીં, તો તારા બાપા ને કે જમાવે? એના બાપા એ જમાવતા તો એ ગામમાં બેઠીને, ચોરે બેઠીને દુકાનમાં ઉભા ઉભા હું વાત કરતા હોય, બાપા ગઢા ભેગા થઈને વાત કરતા હોય કે આ લાદેન અને બુશ નો શું દખો છે, સરકાર ના વહીવટ કરતા હોય, લાદેન બુશ નું કઈ મૂકશે નહીં? અરે ગામના તને નહીં મૂકે, ગામના જે કરીને બેઠો છો ને એ ઉઘરાણી વાળા તને નહીં મૂકે, વહીવટ કરતા હોય લાદેન અને બુશ ના. તાત્પર્ય યહ હૈ, ભક્તો કા સંગ કરના ચાહીએ, પરંતુ લોગ પિક્ચર દેખતે હૈ, થિયેટર ટીવી દેખતે હૈ, જીવન કા સર્વોચ્ચ કામ હૈ ભજન કરના. તો આપસ મેં ભક્તગણ મિલતે હૈ ઓર મિલકર ભજન કી બાતે કરતે હૈ. આપ સોચ રહે હૈ ગુજરાતી ક્યું બોલ રહે હૈ, ક્યોંકિ ગુજરાત મેં જાકર આયા મેં અભી 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 મેં યહાં પર નહીં થા તો ગુજરાત મેં ગયા થા, ઓર વહાં પર સબ લોગ ગુજરાતી ઓર મુજે કહા ગુજરાતી મેં પ્રવચન દીજીએ, તો જીવન મેં પહેલી બાર ગુજરાતી મેં 5-6 દિન કથા કરકે આયા, તો થોડા બહોત પ્રભાવ રહ ગયા. તો વિશ્વામિત્રજી વશિષ્ઠજી કે ઘર પર ગયે, ઓર જબ વિશ્વામિત્રજી વશિષ્ઠજી કે ઘર પર ગયે, ઉન્હોને સ્વાગત કિયા ઓર સ્વાગત કરકે જબ કુછ દેને કા અવસર આયા, તો વશિષ્ઠજી ને વિશ્વામિત્રજી કો કહા કે મેને મેરે જીવન મેં જીતના ભક્તો કા સંગ કિયા હૈ, જીતના સત્સંગ કિયા હૈ, ઉસ સત્સંગ મેં સે ઉસ સત્સંગ મેં સે આધી ઘડી કે સત્સંગ કા ફલ મેં તુમે દાન મેં દેતા હું. વિશ્વામિત્રજી તો ક્રોધિત હોને લગે, મેને મેરે જીવન કી આધી તપસ્યા ઇસે દાન મેં દે દી ઓર યે કેવલ અપને જીવન કા આધે ઘડી કા સત્સંગ કા ફલ મુજે દાન મેં દે રહા હૈ. યે કોઈ દદાતી પ્રતિ ગ્રહણાતી હૈ? યે તો હમારી તરહ હોગા હુઆ, જૈસે હમ કિસી કી શાદી મેં 501 કા ચાંદલા લિખાતે હૈ ઓર કોઈ હમારી શાદી મેં 51 રૂપિયે કા ચાંદલા લિખા કર ચલા ગયા. યહાં પર જીવન કી આધી તપસ્યા દાન મેં દે દી ઓર ઉન્હોને અપને જીવન કા આધે ઘડી કા સત્સંગ દાન મેં દિયા. ઓર વિશ્વામિત્રજી તો ક્રોધિત હુએ કે એસા ક્યું, મેને તુમે ઇતના કુછ દાન મેં દિયા ઓર આપને કેવલ આધે જીવન કા આધી ઘડી. બહોત બડા ઝઘડા હુઆ, વિશ્વામિત્રજી ઝઘડા કરને લગે કે મેને ઇતના કુછ દિયા, આપને આધે આધે ઘડી કા સંગ કા મુજે ફલ દિયા. તો વશિષ્ઠજી કહેને લગે, આપને જો મુજે દિયા હૈ ઉસસે બડી ચીજ મેને તુમકો દી હૈ, દોનો મેં બહોત બડા ઝઘડા હુઆ, મેને જો દિયા હૈ વહ બડા હૈ, વો કહતે હૈ મેને દિયા વો બડા. અબ દોનો મેં ઝઘડા, અબ ઝઘડા હુઆ તો નિર્ણય કોણ કરે, તીસરી પાર્ટી તો ચાહીએ નિર્ણય કરને કે લિયે. અબ દોનો સોચને લગે કે ઇસ પ્રકાર ઝઘડા કરને સે કોઈ મતલબ નહીં હૈ, ઇસસે કોઈ રિઝલ્ટ નહીં આયેગા, અબ કિસી એક વ્યક્તિ કો બીચ મેં ડાલતે હૈ ઓર ઉસે પૂછતે હૈ કે ક્યાં ઇસમે સે ક્યાં બડા હૈ, કહા કિસકે પાસ જાય, એસા ન્યુટ્રલ વ્યક્તિ હૈ કોણ. તબ દોનો ને એક સાથ કહા કે શંકરશણ જો અનંત કોટી બ્રહ્માંડો કો અપની ફેણ કે ઉપર સપોર્ટ કરકે બેઠે હૈ, ભગવાન શંકરશણ કે પાસ જાકર યે પ્રસ્તાવ રખતે હૈ ઓર બતાઈએ હમ કોણ બડા હૈ. દોનો ભગવાન શંકરશણ કે પાસ ગયે ઓર જાકર કહા કે મેને મેરે જીવન કી આધી તપસ્યા ઓર ઇસને ઉનકે જીવન કી આધે ઘડી કે સત્સંગ કા ફલ દિયા હૈ, દોનો મેં સે બડા કોણ, જ્યાદા ફલ કિસકા. શંકરશણ ને કહા, ભાઈ દેખો ઓલરેડી મેરે પર ઇતના બોઝ હૈ, ઇતને બ્રહ્માંડો કા બોઝ મેં મેરે સિર પર લેકર બેઠા હું, પહેલે મેરા યે બોઝ હલકા કરો તબ જાકર આપકે પ્રશ્ન કા ઉત્તર દુંગા મેં, કુછ દેર કે લિયે મેરા યે જો વજન મેરે સિર પર રખા હૈ થોડી દેર કે લિયે આપ ઉઠા લો, તબ જાકર મેં કુછ સોચ કર કુછ આપકા જવાબ દે સકું. તો કહા ઠીક હૈ, વશિષ્ઠ વિશ્વામિત્રજી ને કહા ઠીક હૈ, મેં આપકા બોઝ કુછ દેર કે લિયે ધારણ કર લેતા હું, આપ તબ તક સોચ લીજીએ. શંકરશણ ને કહા ઠીક હૈ, આપ યે રખો પૂરા બ્રહ્માંડ उठाकर विश्वामित्र जी को दे रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं मेरे जीवन की पूरी तपस्या दाव पर लगाकर कहता हूँ, मैं मेरे जीवन की पूरी तपस्या यहाँ रखकर कहता हूँ कि यह पृथ्वी इस तपस्या के बल पर उठ जाए, गिरे नहीं। ठीक है, शंकरशन ने कहा मैं रखने जा रहा हूँ, देखो आपकी तपस्या ठीक से रखी है ना। विश्वामित्र जी ने कहा आप पूरे जीवन की तपस्या लगा दी है, आप रखो। रखा शंकरशन ने, जैसे ही ब्रह्मांड रखा 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 तो बाप रे बाप गिर गया। गिरते गिरते कैसे भी करके शंकरशन जी ने उठा लिया। भगवान ने कहा कि आपके पूरे जीवन की तपस्या भाई काम में नहीं आई। ठीक है, वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, चलो उत्तर ही चाहिए हमें, तो एक काम करो मैं आपको सपोर्ट करता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, मैं मेरे जीवन के जीवन में मैंने जितना सत्संग किया है उस सत्संग के आधे सेकंड का 14वां हिस्सा मैं यहां पर रखता हूं, उसके बल पर आप इस ब्रह्मांड को रखो, ये नहीं गिरेगा। शंकरशन ने कहा इसने पूरे जीवन की सारी तपस्या रख दी और आप सत्संग की एक छोटी सी घड़ी का फल रख रहे हो। रखो रखो प्रभु आप रखो। जैसे ही शंकरशन जी ने अपने ब्रह्मांड को उस आधे घड़ी के सत्संग के फल के ऊपर रखा, रखते ही यह ब्रह्मांड ऊपर आ गया। दोनों ने कहा प्रभु अब तो ब्रह्मांड ऊपर आ गया, अब तो आप जवाब दो। शंकरशन ने कहा अभी भी जवाब की जरूरत है। विश्वामित्र जी पूरे जीवन की तपस्या से भी यह ब्रह्मांड नहीं हिला, यह ब्रह्मांड नहीं टिका और इसके जीवन के सत्संग की आधी घड़ी के फल से यह ब्रह्मांड उड़ गया। वास्तव में पूरे जीवन की तपस्या के सामने यदि सत्संग का आधे घड़ी का फल रखा जाए तो वह आधे घड़ी का फल महान है, ज्यादा है। तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग ये जितना भी फल है, ये जितना भी साधन है, तुला के एक छबड़े में रखा जाए, एक पलड़े में रखा जाए और एक पलड़े में एक घड़ी का लव सत्संग की एक घड़ी रखी जाए, फिर भी वह सत्संग की जो घड़ी है उसका वजन बढ़ जाएगा। भगवान के भक्तों के संग में ये प्रभाव है। सत्संग का अर्थ होता है, सत्कार होता है नित्य, जिसका कोई अंत नहीं है। और नित्य नित्य नानाम, गीता में भगवान कहते हैं नित्यों में नित्य केवल मैं। भगवान श्री कृष्ण नित्य है और भगवान श्री कृष्ण की जहां पर कथा होती है उन लोगों को सत्संग कहा जाता है। तो ऐसे सत्संग का लाभ हमें प्रति बुधवार को यहां पर होता है। हम सबका परम सौभाग्य है कि कम से कम हम सत्संग में तो आ गए हैं। अब सत्संग में आकर क्यों आते हैं, खिचड़ी खाने के लिए आते हैं या सोने के लिए आते हैं, या घर पर बीबी बच्चे परेशान करते हैं तो टाइम पास करने के लिए आते हैं, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं या भक्ति करने के लिए आते हैं। सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु सत्संग हो रहा है यह बहुत बड़ी चीज है। एन केन प्रकारेण मनो कृष्ण निवेशया, कैसे भी करके सत्संग होना चाहिए। कोई उद्देश्य कुछ भी हो, सत्संग यदि हो जाता है तो सत्संग का अपना एक प्रभाव होता है। तो परम सौभाग्य है हम सबका प्रति बुधवार को सत्संग संतों के संग में आकर भागवत कथा का श्रवण करते हैं। भागवत कथा में अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक को हमने छोड़ा था, 11वां श्लोक ले लिए थे हम। यम पश्यन्ति न पश्यन्तम् चक्षुर्यस्य नरिष्यति। मनु महाराज भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति में कह रहे हैं भगवान को कि हे प्रभु यम पश्यन्ति, संसार आप संसार के लोग को देख सकते हो परंतु संसार के लोग आपको नहीं देख सकते हैं। सत्य बात, भगवान संसार के लोगों को देख सकते हैं परंतु हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। इससे चाचा की एक बात याद आ रही है। एक बार एक धोबी का गधा घूम गया। धोबी गधा रखते हैं, गधे के ऊपर वजन रखकर वो नदी किनारे में जाते हैं कपड़ा धोने के लिए। तो क्या पता बेचारा गधा घूमते घूमते कहीं चला गया, तो धोबी ने पूरे गांव में ढूंढा, वो गधा नहीं मिला। पूरे गांव में छान करके जब गधा नहीं मिला तो निराश होकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और देख रहा था गधा कहीं मिल जाए। और उसी पेड़ के नीचे घूमते 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 एक प्रेमी और प्रेमिका, आज की भाषा में जिसे कपल कहते हैं। अब इसमें भी अलग अलग शब्द होते हैं, दंपति, कपल और क्या कहते हैं, क्या है और एक, पति और पत्नी को दंपति भी कहा जाता है, कपल भी कहा जाता है। तो एक वक्त बहुत सुंदर कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन किसे कहा जाता है, दाम्पत्य जीवन उसे कहा जाता है कि मान लीजिए पति घर से बाहर जा रहे हैं तो पत्नी अपने पति को कहे कि आप जा रहे हो तो मेरे लिए एक साड़ी लेकर आना, और देखो घर पे गेहूं खत्म हो गए तो एक गोनी वह भी लेकर आना, और हाँ मेरी लिपस्टिक भी खत्म हो गई है तो साथ साथ वह भी एक लेकर आना, और बच्चों के लिए दो जोड़ी कपड़ा भी लेकर आना, और बहुत कुछ अपना लिस्ट निकाल कर दे दे पति को कि इतना इतना लेकर आना। इसे दंपति कहा जाता है, इसे दंपति। और यदि पति बाहर जाने के लिए अपनी कीक मारता है और जंप लगाकर पत्नी उसके पीछे बैठ जाती है तो इसे कपल कहते हैं। तो ऐसे कपल घूमते घूमते उसी पेड़ के नीचे आए जहां पर वो धोबी बैठा था, ऊपर अपने गधे को ढूंढ रहा था। तो इस पेड़ के नीचे आकर बैठे और कपल तो घंटों भर बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं, कुछ कुछ लोगों को अनुभव होगा। लेकिन बैठे हुए बात कर रहे थे, उतने में वो जो प्रिय था, वो जो लड़का था, लड़की को कहा कि प्रिय प्रिय क्या बताऊं, मुझे तो तुम्हारे रूप में ही पूरा संसार दिख रहा है। प्रिय तुम्हारी आंख की मैं क्या प्रशंसा करूं, तुम्हारी इतनी सुंदर आंख है, इतनी सुंदर आंख है कि तुम्हारी आंख में मुझे पूरा जगत दिख रहा है। ऊपर बैठे हुए धोबी ने कहा मेरा गधा दिख रहा है। तो संसार के लोक में ये यम पश्यन्ति न पश्यन्तम इसके पर बोल रहा हूं, संसार के लोग केवल बोल सकते हैं कि मुझे जगत दिख रहा है, परंतु देखते नहीं है कोई, दिख रहा कुछ नहीं होता है। अब तो भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान इस संसार में सभी लोग सभी जीवों के बारे में भगवान खबर रखते हैं, और किस प्रकार से चक्षुर यस्य नरिष्यति न भूत निरयम देवम सुपर्ण मूप धावत। आधा श्लोक हुआ था, आधा श्लोक बाकी था, कहते तम भूत निलयम देवम, भगवान जो है सभी प्राणियों को निलयम, निलयम का अर्थ होता है आश्रय, भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। निलयम नी का अर्थ होता है नितराम, और लय का अर्थ होता है टीक जाना। नितराम जहां पर वास हो जाता है, जहां पर घर जमा कर रहने लगते हैं उसे निलय कहते हैं, निलयम कहते हैं। तो भगवान सभी जीवों के हृदय में टिके हुए हैं। सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्टो, गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम रिधि दिशे अर्जुन तिष्ठति। ये अर्जुन, भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान का रहने का स्थान कहां पर है, सभी जीवों के हृदय में, भगवान और कहीं नहीं रहते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। और सभी जीवों के हृदय में रहकर क्या करते हैं, देवम सुपर्णम। सुपर्णम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, परंतु रहकर जीव के प्रति उनका स्वभाव कैसा है, तो कहते हैं सुपर्णम। सुपर्णम का एक अर्थ होता है मित्र, भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं मित्र भाव में, मित्र का स्वभाव होता है, अच्छे मित्र का स्वभाव होता है कि अपना मित्र यदि दुख में हो तो उसका दुख दूर करता है, और सुख में कभी उसके पास नहीं जाता है। जो न मित्र होई दुखी दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी। गोस्वामी जी कहते हैं जो मित्र अपने दुखी मित्र को देखकर दुखी नहीं होता है तो वो तो सबसे बड़ा पापी है। वास्तव में सही मित्र वो है जो अपने मित्र को देखकर दुखी देखकर स्वयं भी दुखी हो। तो भगवान का स्वभाव मित्र के समान है। दुखी सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और सभी जीवों के बारे में भी जानते हैं कि यह व्यक्ति कितना दुखी है। तो उस दुखी मित्र को देखकर भगवान भी दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। और यहां पर सुपर्ण अर्थ आचार्य तो बहुत बहुत इस पर लिखते हैं, परंतु इतना ही समझिए। सुपर्ण का और एक अर्थ मैं आपको समझाऊं। संस्कृत संधि विच्छेद के अनुसार सु का अर्थ होता है सुष्टु, बहुत अच्छी। कुंडल किशोर ने कहा था, ठीक है तो मैं कह दूं। सुपर्ण भगवान कैसे हैं, कहते हैं सुपर्ण के समान। सु का अर्थ होता है सुष्टु, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। और पर्ण का अर्थ होता है पंख। जिसके पास बहुत अच्छी पंख होती है ऐसे पक्षी को सुपर्ण कहा जाता है। तो भगवान को यहां पर पक्षी कहा गया है। भगवान कैसे हैं, भगवान पक्षी के समान है। और कैसे, अच्छी पंख वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पर बैठ गए तो बस बैठ ही गए, उनकी पंख बहुत अच्छी है। कभी भी प्राण पंखेरु उड़ा सकते हैं, बहुत बहुत इसमें छिपा हुआ है। कभी भी भगवान जीव को लेकर उड़ सकते हैं। और आइए वेदों में, वेदों की दृष्टि से यदि भगवान के इस नाम को लिया जाए सुपर्ण, तो वेदों में कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, द्वासुपर्णा सयुजा सख्या समानम वृक्षम परिश्य स्वजाते। जीव की गति को बताते हुए कहते हैं कि एक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। कैसे, जैसे एक पेड़ की डाली के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। पेड़ की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल खा रहा है, निरंतर फल खा रहा है और उस फल को अच्छा या बुरा महसूस कर रहा है, और दूसरा पक्षी उसे देख रहा है। एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसे देख रहा है। दोनों की उपमा पक्षी के साथ की गई। तो जो फल खा रहा है और कोई नहीं, वह स्वयं जीवात्मा है, आत्मा है। और जो फल खाते खा रहे हुए व्यक्ति को देख रहा है वह पक्षी स्वयं भगवान परम परमात्मा है। परमात्मा जो है, भगवान जो है, वह देख रहे हैं कि व्यक्ति कितना दुखी है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, वास्तव में तुम कृष्ण, तुम भगवान नहीं हो। और हम चैलेंज के साथ कहती हैं कि तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं। न खलु गोपिका नंद नो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, विखन सारथी तो विश्व गुप्त ये सखु देवान सात्वताम कुले। कृष्ण, कृष्ण आप भगवान नहीं हो, आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो। क्योंकि नंद और यशोदा के यदि आप पुत्र होते तो हमारे दुख को देखकर आप भी दुखी होते। इस संसार में हजारों हजारों लोग दुखी हैं, हजारों हजारों लोग मर रहे हैं, परंतु एक भी व्यक्ति का दुख आपने दूर किया? ये तो गोपियां ही कह सकती हैं। भगवान को कहती हैं कि संसार में सभी लोगों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हो। वेद शास्त्र उपनिषद सब लोग कहते हैं, आप भी गीता में खड़े खड़े कहते हो, ईश्वर सर्व भूतानां, मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ। सबके हृदय में रहते हो, अनंत अनंत काल से आप अनंत रूप धारण करके अनंत जीवों के हृदय में रहते हो। अनंत लोग दुखी हैं, परंतु एक भी व्यक्ति का दुख दूर आपने किया नहीं किया। हम लोग यहाँ पर दुखी हैं, आपको प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपका दुख, हमारा दुख आपने दूर किया नहीं किया। हम कहती हैं कि आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, क्योंकि यशोदा का अर्थ होता है यश, यशोद जो दूसरों के ऊपर दया करे। दूसरों के ऊपर दया करने वाली, दूसरों का दुख देकर दुखी होने वाली यशोदा के पुत्र आप, हम लोग नहीं मानती। यदि यशोदा के पुत्र होते तो हमारे दुख को देखकर आपका हृदय द्रवीभूत हो गया होता। तो कृष्ण ने पूछा, तो अच्छा तो मैं कौन हूं? गोपियों ने कहा, न खलु गोपिका नंद नो भवान। आप न तो यशोदा के पुत्र हो, न तो आप नंद बाबा के पुत्र हो। भगवान ने कहा, अच्छा तो मैं कौन हूं? कहते हैं, अखिल देह नाम समस्त जीवों के हृदय में रहने वाले अंतरात्म द्रिक आप परमात्मा हो। और आप परमात्मा भी क्यों बने हो? विखन सारथी तो विश्व गुप्त, ये ब्रह्मा जी ने जब आपको बुलाया और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप सबके हृदय में आए हो, न तो आप किसी के हृदय में भी नहीं आने वाले थे। ये भक्तों का भाव है, तात्पर्य यह है कि भगवान सबके हृदय में मित्र के रूप में बैठे हैं। यदि आप उससे मित्रता कर लो तो आपकी पूरी पूरी रक्षा करेंगे, वही परमात्मा। यदि आप उससे मित्रता नहीं करते हो तो वे केवल आपको देखते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। संसार में कई लोग कहते हैं कि हम इतने दुखी हैं, भगवान हमारी हेल्प क्यों नहीं करते हैं? परंतु कभी हमने भगवान की ओर देखा? रास्ते में मंदिर आया है तो क्या मंदिर में हम लोग गए? कभी भगवान के नाम का जप किया? कभी हृदय से और मन से भगवान का महामंत्र जपा? ये तो ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन में जाने का समय में भगवान का नाम ले लेते हैं। कभी पर्सनली एक घंटा में भगवान को दे रहा हूं, कभी ऐसा समय निकाला? कभी नहीं। मित्र है तो मित्र के लिए समय भी होना चाहिए। जब उस परम मित्र भगवान को हम समय देंगे, उसका नाम लेंगे, उसकी कथा सुनेंगे, तो निश्चित रूप से वे हमारे साथ मित्रता करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो वे भी देखते रहेंगे कि ये क्या कर रहा है। कई लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि आप लोग कहते हो कि भगवान सबके हृदय में है, तो भगवान भी देखते होंगे कि सब लोग दुखी है तो भगवान क्यों दुखी नहीं होते? सब लोग दुखी हैं तो भगवान क्यों भगवान क्यों दुखी होने जाए? भगवान तो हेल्प करने के लिए बैठे ही हैं, परंतु हम भगवान से हेल्प मांगे तब ना। सबसे पहले तो भगवान कौन है यही लोग नहीं जानते। ये बापू भगवान है, ये बाबा भगवान है, देवी, ये देवता। कहीं भी शास्त्र वेद उपनिषद में नहीं लिखा है कि हृदय में ये देवी बैठी है और ये देवता बैठे हैं। कभी भी देखो तो यही लिखा होगा, परमात्मा या कृष्ण इत्यादि बैठे हैं। तो भगवान सबके हृदय। हाँ, लोग कहते हैं कि हम दुखी होते हैं तो भगवान क्यों दुखी नहीं होते हैं? भगवान क्यों दुखी हो? भगवान तो परम सुखी हैं, उनका शरीर ही बना है सुख से। कृषि भूवाचक नच निवृत्ति वाचक, जिसके अंदर से केवल सुख ही सुख और आनंद ही आनंद निकलता रहे, वह व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है? एक कवि तो बहुत सुंदर कहते हैं कि गंगा जी ही परम पवित्र ब्रह्म द्रव जो भगवान के चरणों से निकली है, या गंगा जी यदि चाहे कि मैं अपवित्र हो जाऊं, चाहे फिर भी वे नहीं हो सकती। भले गंगा जी में कितने नदी नाले, कितनी गंदगी, कितने कचड़े लोग डालते हैं, फिर भी गंगा अपवित्र नहीं होती। स्वयं इच्छा करे फिर भी गंगा अपवित्र नहीं हो सकती। सूर्य यदि चाहे कि जरा मैं एक घंटा अंधकार को देख लूं, अंधकार कैसा होता है, तो क्या सूर्य अंधकार को देख सकता है? क्योंकि जहां सूर्य की बात छोड़ दीजिए, जहां सूर्य की सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर छोटा सा किरण भी सूर्य से निकल जाए तो वहां से अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य यदि चाहे भी कि मैं अंधकार में चला जाऊं, वो नहीं जा सकता है। और वो कवि कहते हैं कि यदि देवी सरस्वती देवी चाहे कि मैं मूर्ख बन जाऊं, पागल बन जाऊं, वह चाहे फिर भी वह मूर्ख या पागल नहीं हो सकती है। और यदि लक्ष्मी जी चाहे कि मैं भिखमंगी बन जाऊं, दरिद्र बन जाऊं, यदि इच्छा भी हो जाए लक्ष्मी जी की कि मैं दर दर भटक कर भीख मांगू, फिर भी वह भिखारी नहीं हो सकती है। तो जैसे गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती है, सूर्य कभी अंधेरे में नहीं आ सकता है, लक्ष्मी कभी दरिद्र नहीं हो सकती है और सरस्वती कभी मूर्ख नहीं हो सकती है, वैसे कृष्ण कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। परमात्मा भगवान कृष्ण कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। वो दुखी होना यह सब हमारा काम है, और यदि हमें सुखी होना है, कृष्ण से सुख चाहिए, तो कृष्ण के प्रति मित्रता करनी चाहिए। मित्रता का अर्थ है कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। मनु महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करते जा रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि प्रभु न आदि अंतो मध्यम च। ए प्रभु, आपका न तो आदि है, आपका न तो अंत है और न तो आपका मध्य है। आपका कोई और छोर, आपको कोई ठिकाना ही नहीं है। आपका आदि नहीं अर्थात आपकी जन्म तारीख लोग हजारों साल से ढूंढ रहे हैं कि प्रभु भगवान की कोई जन्म तारीख भी है, आज तक कोई ढूंढ नहीं पाए। आपका आदि नहीं है, आपका जैसे हमारा आदि, हमारा भी हमारे शरीर का आदि है। जैसे आप कह सकते हो मेरे शरीर का आदि आज से 26 साल पहले हुआ था, आदि अर्थात जन्म, और अंत भी निश्चित है हमारा। जातस यही ध्रुव मृत्यु, जिस दिन हमारे इस शरीर का जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु की तारीख नक्की हो जाती है। तो हम सबके जीवन का आदि भी है, अंत भी है, परंतु भगवान का कोई न तो आदि है न तो अंत है। संसार में कुछ लोग पूछते हैं कि अभी मुझे ही गांव में पूछा था एक व्यक्ति ने, अच्छा तो कृष्ण का जन्म कभी हुआ? मतलब ये द्वापर युग के कृष्ण की बात नहीं, भगवान का जन्म कभी हुआ, भगवान कब से है? तो जब ऐसा प्रश्न उठता है, जब ऐसा प्रश्न लोग कहते हैं, तो मनु महाराज की इस बात को कह देना चाहिए, न यस्य आदि अंतो च मध्य। भगवान का न तो आदि है और न तो अंत है, भगवान का आदि नहीं है। ब्रह्मा जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान को पूछा जाए कि भगवान का आदि क्या है, तो इसके उत्तर में यही आता है कि भगवान का कोई आदि नहीं है, वे अनादि है। अनादि, जिसका कोई आदि, जिसका कोई फिक्स नहीं है कि इतने वर्ष पहले भगवान का जन्म हुआ, इतने वर्ष पहले भगवान हुए, यह बोलना भी एक अपराध है। तो मनु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, न अस्य आदि मध्यम अंत मध्यम च। हे प्रभु, आपका न तो आदि है, आपका न तो मध्य है और आपका न तो अंत है। आगे कहते हैं, च स्व परो न स्व, न इस संसार में आपका कुछ नहीं है। अर्थात भगवान कभी भी ऐसा नहीं कहते कि ये मेरा है। न स्व, स्व कर जानते हैं ना, स्व ये स्वमान अर्थात ये स्व, ये अपना है, मेरा है। तो भगवान के लिए उनका कुछ नहीं है। इस संसार में हम लोग ही कहते हैं कि ये घर मेरा है, इसका एग्रीमेंट फलाने फलाने भाई का, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरे नाम पर है। अब भगवान को कहीं एग्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट करे या लिखा ले या साइन करे। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। भगवान को ये कहने की भी जरूरत नहीं कि ये मेरा है। यदि भगवान कह दे कि ये मेरा है, इसका अर्थ है कि और कुछ जो है ये पराया है, दूसरों का। इसलिए मनु महाराज कहते हैं न स्व, भगवान के लिए अपना कुछ नहीं, और न पर, और भगवान के लिए पराया भी कुछ नहीं। बहुत सुंदर सिद्धांत है। वास्तव में ये सब कुछ भगवान का है। हम यहां से वहां उधर का माल उधर करते हैं और अपना मानने लगते हैं। अरे चाचा बहुत सुंदर कथा कहते हैं। एक बार एक गुजरात के साधु थे, बेचारे साधु संत तो कहां झोपड़ी में रहते हैं। एक चोर को क्या सूझा कि बेचारे साधु के घर पे चोरी की। साधु के पास तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, कुछ बाल्टी, कुछ मग स्नान करने के लिए कुछ होगा, थोड़ा बहुत सामान। तो चोर साधु के घर पर चोरी करके चला गया। साधु ने देख लिया, साधु की नींद भी बहुत पक्की होती है, रात को कुछ आवाज आया, साधु उठे और देखा चोर चोरी कर रहा है, तेरी जात का चोर करके भागे उसके पीछे। चोर आगे आगे, साधु पीछे पीछे, चोर के पीछे बहुत पीछा किया, बहुत पीछा किया, लेकिन वो चोर थोड़ी ना साधु के हाथ में आएगा। चोर भाग के चला गया, साधु यहां पर अब तो क्या करें, चोर चोरी करके गया। साधु पूरे गांव में चोर को ढूंढे, चोर कहीं नहीं मिला, तो साधु घर पर नहीं आए, साधु शमशान में जाकर बैठ गए। तो गांव के लोग हैरान हो गए कि ये साधु अब झोपड़ी में अपने मठ में नहीं रह रहे हैं, शमशान में क्यों बैठे। गांव के लोग को बहुत प्रश्न हुआ, बहुत प्रश्न हुआ। एक दिन किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, साधु महाराज आप अपनी झोपड़ी छोड़कर यहाँ शमशान में क्यों बैठे हो। उस दिन वो साधु ने इतना ही कहा, वो गुजरात के साधु ने कहा कि एक चोर आया था, चोरी करके चला गया है। तो चोर चोरी करके चला गया तो आप शमशान में क्या कर रहे हो। साधु ने इतना ही कहा कि भले वह चोर चोरी करके चला गया है, लेकिन एक ना एक दिन तो वह इसी शमशान में आने वाला है। बहुत सुंदर भाव था कि भले कोई कितना भी यहाँ का माल वहां कर ले, कोई कितना भी अपने नाम पर एग्रीमेंट बना ले, ये घर मेरा, बोरीवली में मेरा, भावनगर में मेरा, मीरा रोड में मेरा, अपना कितना अपने नाम पर कितना भी फ्लैट बना ले, अपने नाम पर कितना भी धन संपत्ति रख ले, लेकिन छोड़कर तो इधर ही जाएगा ना, जाएगा तो शमशान में, कितना भी बड़ा मालिक बन जाए, जाएगा तो उस लकड़े के ऊपर सो जाएगा, राख बन जाएगा। ऐसे भगवान, सब कुछ भगवान का है, मेरा 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 करके लोग अहम और अहंकार में रहते हैं और अपना जीवन उसमें बिता देते हैं। मनु महाराज कहते हैं कि न स्व भगवान के लिए अपना कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, और न पर भगवान के लिए पराया भी कुछ नहीं है। अर्थात इस संसार में जितने भी जीव हैं भगवान के अपने, पराये कोई नहीं। सर्वत्र सम दर्शनम, सबके ऊपर भगवान की सम दृष्टि होती है। और आगे कहते हैं कि न अंतरम बही, भगवान के अंदर कुछ नहीं है। न अंतरम, जैसे हमारे अंदर, हमारे शरीर को यदि खोल कर देखा जाए तो इसमें हड्डी मांस मज्जा, इसमें बहुत कुछ है, परंतु भगवान के शरीर में ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। भगवान के शरीर में खून या हमारी तरह पंच महाभूत का नहीं बना हुआ। भगवान का शरीर सच्चिद आनंदमय है, स्पिरिट सोल है भगवान का। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं, हम जब छोटे थे तो दुकान में जाते थे चॉकलेट खाने के लिए, तो कभी कभी ऐसी चॉकलेट मिलती थी, पेपरमेंट मछली के आकार की, कुछ आदमी के आकार की, कुछ पेपरमेंट थी हाथी के आकार की, कुछ घोड़े के आकार की। फिर वो देखकर थोड़ी देर खेलते थे उसे, फिर उसे खा जाते थे। आप लोगों ने खाया है? जिसने खाया होगा तो उसे पता होगा कि वह हाथी भी है, घोड़ा भी है। खेलते हैं, ये मेरा हाथी, ये तेरा हाथी, ये मेरा घोड़ा, ये तेरा घोड़ा, ये मेरा लड़का, लड़के का भी, लड़के के आकार की भी होती है। तो भगवान का रूप मनुष्य जैसा है, इसमें कोई दोराय नहीं है। भगवान दिखने में मनुष्य जैसे हैं, परंतु उसका शरीर स्पिरिचुअल सोल है। जैसे वह घोड़ा है, वह हाथी है, वह मछली है, वह मनुष्य है, परंतु उसे खाओगे तो वह मीठा मीठा पेपरमेंट ही है, वह चॉकलेट ही है। ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मेरे जैसा ही आदमी है। कोई ऐसा नहीं कर सकते ये मछली खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहा है, नहीं, वो तो चॉकलेट ही है। ठीक उसी प्रकार भगवान दिखने में हम जैसे हो सकते हैं, मनुष्याकार है, द्विभुज है, हमारे जैसी आंखें हैं, हाथ है, कान है, परंतु वे बहुत स्वीट है, मधुर है, हमारी तरह कड़वे नहीं है। अर्थात हमारी तरह भगवान का शरीर नहीं है, भगवान का शरीर स्पिरिचुअल सोल है। तो यहां पर मनु महाराज भगवान की महिमा बताते हैं कि न अंतरम, भगवान के अंदर कुछ नहीं है, और न वही, भगवान के बाहर भी कुछ नहीं है, वही कार्य होता है जैसे हमारे बाहर ये सृष्टि है, ये जगत है, संसार है, ये समाज है, परंतु इस समाज को हम वश में नहीं कर सकते हैं। इस समाज को, इस दुनिया को हम वश में नहीं कर सकते हैं। अरे हम हमारी पत्नी और बच्चे को ही वश में नहीं कर सकते हैं, ये समाज को क्या वश में करेंगे। परंतु भगवान के वश में पूरा जगत, भगवान के बाहर कुछ नहीं है, भगवान के बाहर कुछ नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान के कंट्रोल में पूरी दुनिया है। न भाई, और कहते हैं विश्वस्याम ऋणि यत् यस्मात् विश्वम च तद्धृतम् महत्। वे परम सत्य, मनु महाराज कहते हैं कि वे परम सत्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। इस प्रकार मनु महाराज भगवान की प्रार्थना करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। मनु महाराज बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना किए कि यद्यपि भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, परंतु इस संसार में लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं कर्म करते हैं। भगवान कर्म करते हैं ताकि संसार के लोग उनके कर्मों की कथा सुनकर अपने जीवन का उद्धार कर सके, और इस संसार के लोग यह न सोचे कि भगवान भी कुछ कर्म नहीं करते हैं तो हम भी कुछ कर्म नहीं करेंगे। संसार के लोगों के लिए भगवान कर्म करते हैं, ऐसे भगवान परम दयालु हैं। इस प्रकार से मनु महाराज स्तुति करते जा रहे थे। मनु महाराज भगवान की स्तुति में लीन थे। यहाँ पर असुरों ने देखा कि ये मनु और शत्रुपा दोनों भगवान की स्तुति कर रहे हैं। असुरों को बहुत भूख लगी थी। भूख लगने के कारण असुर लोग मनु महाराज के पास आए और जैसे ही मनु महाराज को मारने का प्रयास किए, भगवान ने देख लिया कि मेरे भक्तों को ये असुर लोग मारने जा रहे हैं। भगवान अपने धाम से उतरकर समस्त देवताओं को लेकर भगवान वहां पर आए, और उस वक्त भगवान अपने पुत्र को लेकर आए थे, और उस भगवान का नाम था भगवान यज्ञ। भगवान यज्ञ का अवतार हुआ और भगवान यज्ञ ने मनु महाराज और शत्रुपा का रक्षण किया, असुरों को अपने धाम में भेज दिया। और उस वक्त स्वर्ग को संभालने के लिए इंद्र नहीं थे, इंद्र की पोस्ट खाली थी, इसलिए भगवान यज्ञ ने अपने शरीर से, अपने ही रूप से इंद्र बनकर स्वर्ग में इंद्र की पोस्ट संभाली। यहाँ पर बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट होता है, ये शिव, ब्रह्मा, इंद्र, गणपति, ये किसी के नाम नहीं है, ये पोस्ट है। जैसे है वड़ा प्रधान, ये किसी का नाम नहीं है, वड़ा प्रधान एक पोस्ट है, वहां पर कोई भी आ सकता है, मनमोहन सिंह भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लालू प्रसाद यादव भी आ सकता है। तो ये इंद्र, ब्रह्मा, शिव, ये जो भी है, ये पोस्ट है। ये इंद्र जो है ये पोस्ट है, और भगवान ने देखा कि इस पोस्ट पर कोई काबिल नहीं है, इसलिए स्वयं इंद्र बन गए। तो पहले मन्वंतर की कथा में भगवान यज्ञ का जन्म हुआ, मनु और शत्रुपा की रक्षा की, और वह भगवान यज्ञ इंद्र के रूप में इंद्र का आसन संभाले। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की, मन्वंतर की कथा सुनाओ। पहले मन्वंतर की कथा समाप्त, दूसरे मन्वंतर की कथा के हे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं दूसरे मन्वंतर में भगवान श्री विष्णु अग्नि और अग्नि के रूप में, अग्नि के पुत्र के रूप में, क्षमा कीजिए, दूसरे मन्वंतर में अग्नि के पुत्र के रूप में स्वारोचिस पुत्र प्रकट हुए, और स्वारोचिस ये दूसरे मन्वंतर के मनु बने, और इस मन्वंतर में वेदशिरा और तुषिता के पुत्र भगवान विभु के रूप में प्रकट हुए। तीसरे मन्वंतर में राजा प्रियव्रत के पुत्र उत्तम मनु बने, और इस मन्वंतर में भगवान सत्यसेन के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित, चौथे मन्वंतर में प्रियव्रत के पुत्र उत्तम का भाई तामस मनु बना, और इस तामस मन्वंतर में हरि मेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि का जन्म हुआ, और यह भगवान हरि ने स्वर्ग में एक बार एक बहुत बड़े हाथी और एक बहुत बड़े मगरमच्छ का युद्ध हुआ था। क्योंकि हाथी भगवान विष्णु का भक्त था, और यह बहुत बड़े भीषण युद्ध में अंतिम समय में हाथी ने भगवान से विष्णु का नाम लिया तो उस वक्त यह हरि मेधा और हरिणी के पुत्र हरि ने उस गजेंद्र उस हाथी की रक्षा की। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने यह चाक्षुष यह चौथे मनवंतर की जब कथा संक्षिप्त में कह दी तब राजोवाच महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी आपने यह गजेंद्र की कथा जो एक श्लोक में कही मैं इस गजेंद्र की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। बताओ ये गजेंद्र कौन था, ये गजेंद्र कहाँ रहता था और ये क्यों सरोवर में गया था पानी पीने के लिए और ये किस प्रकार से इसका युद्ध हुआ, किस प्रकार से का इसका कुटुंब था, ये गजेंद्र की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए अब आप मनवंतर की कथा को रुका दीजिए और गजेंद्र की कथा प्रारंभ कीजिए। कृपया करके मुझे गजेंद्र की कथा सुनाइए। इतना कहते ही सुखदेव गोस्वामी अपनी अविरत वाणी से कहने लगे, आसीत गिरिवरो राजन, हे राजन, त्रिकुट नाम का एक पर्वत था और इस त्रिकुट पर्वत की कंदरा में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। इस हाथी की कथा मैं आपको अगले बुधवार को प्रारंभ करूंगा। हरे कृष्णा हरे।